मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 30 जनवरी 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, स्वागत करने के बाद मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं और मेरा यह धन्यवाद प्रेषण है आप सबकी उन शुभकामनाओं के लिए जो हम लोगों को आप सबने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दी हैं। मित्रों, अब एक छोटी सी सूचना है और सूचना यह है कि मेरे पास बहुत से मेल आते हैं और उस मेल में अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में वो मुझसे जानना चाहते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपनी मजबूरी बताऊं कि यदि मुझे आपकी व्यक्तिगत रूप से अगर आपको कोई समस्या है और उसका सही निदान बताना है तो डेफिनेटली मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी और थोड़े से लंबे समय के तक बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कई बार भी बात करनी पड़े अगर मैं उसके साथ न्याय करना चाह रहा हूं तो उस समस्या के साथ। मित्रों, इसे आप मेरी मजबूरी मानकर मुझे क्षमा करें कि मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं आपसे लोगों से फोन पर उस समस्या के बारे में विस्तार से बात कर सकूं और यदि मैं उसमें लगूंगा तो बट नेचुरल है कि जो दूसरे काम मैं कर पा रहा हूं जो लगभग लगभग आप सबके लिए ही है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो वो बट नेचुरल है कि मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा या उसमें बाधा आएगी, कमी आएगी, उसकी क्वालिटी खराब होगी। तो स्वाभाविक है दोस्तों कि मुझे इन दोनों में से फिर एक का चयन करना है और ऐसी स्थिति में मैंने फिर अब इसका चयन किया है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा समूह है, एक साथ बहुत लोगों को इससे रास्ता दिखाई देता है तो बट नेचुरल है कि मेरे लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ मेल दोस्तों इस रूप में भी होते हैं कि मैडम से बात करा दें, मैडम प्रीति अग्रवाल से बात करा दें। मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है कि उनके पास मैडम प्रीति अग्रवाल का नंबर नहीं होगा इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं और कुछ मजेदार बात तो ये कि वो लिखते हैं कि मैडम प्रीति अग्रवाल से बात करा दें और अपना मोबाइल नंबर उसमें नहीं लिखते। खैर, तो दोस्तों मैं आप लोगों को मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का नंबर एक बार फिर से दे रहा हूं और आप सब जो भी अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, कुछ समाधान निकालना चाह रहे हैं, उसमें उनकी मदद चाह रहे हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि अब ये जिम्मा उन्होंने संभाला है और ये एकेडमी के लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी है। घर के सारे कामकाज को देखते संभालते करते हुए भी वो आप सबके लिए इतना समय निकाल रही हैं तो आप बिल्कुल उनसे बात कर सकते हैं और उनका जो मोबाइल नंबर है वो आप नोट कर लें। दोस्तों, उनका मोबाइल नंबर है 9644624449। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। तो मित्रों, अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर और मुझे सच में इस बात को जानकर बेहद खुशी हुई फ्रेंड्स की, खासकर जो क्लास में सिक्स बैच में जो हमारे आने वाले स्टूडेंट हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप सब अपने पेरेंट्स तक मेरा आभार पहुंचाएं और धन्यवाद भी पहुंचाएं कि उन्होंने एकेडमी पर विश्वास करके आप लोगों को इस बात के लिए अलाउ किया है कि आप एकेडमी में 15 दिनों के लिए जाएं। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों ने मेरे इस अनुरोध को स्वीकार किया होगा और उसके लिए उचित कदम भी उठाए होंगे और तत्काल उठाए होंगे। ये पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इस पर मुझे कुछ प्रतिक्रियाएं मिली हैं आप लोगों की और सच पूछे तो वो प्रतिक्रियाएं पढ़कर मैं रोमांचित हो गया, बेहद खुशी से भर उठा और यहां तक कि कुछ प्रतिक्रियाएं तो इतनी खूबसूरत थी कि यूं कह लीजिए कि मेरी आंखें तक डबडबा आईं। उसका जो रिस्पांस उनको पेरेंट्स की तरफ से मिला या अपने अंदर उन्होंने जो एक भावना का एक आवेश महसूस किया या तरलता का प्रवाह जो एक जैसे कि धारा, पानी की कोई धारा अनजाने में ही अदृश्य रूप से पेरेंट्स और बच्चे के बीच में खिंच गई हो, या एकदम से बात करने के बाद एक खालीपन सा महसूस, खालीपन मतलब वो लोनलीनेस का नहीं, जैसे कि कुछ भारीपन अंदर था उसका खालीपन महसूस हुआ हो, या फिर ऐसा लगा हो जैसे कि बिल्कुल आसमान एकदम साफ हो गया हो, जो क्लाउडी जो वेदर था आसमान बिल्कुल साफ हो गया है और हमारे सिर के ऊपर जैसे कि एक बहुत बड़ा छाता, छतरी जो नीले आकाश के रूप में है वह खुल गई हो। मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ एहसास खासकर उन लोगों को ज्यादा हुआ होगा जो अपने पेरेंट्स से लंबे समय से बात नहीं कर रहे थे, या बात करना जरूरी भी नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि ठीक है हम कमा रहे हैं, हम ही को निर्णय लेना है कि हमको एकेडमी जाना है या नहीं जाना है, या दूसरे सारे निर्णयों के बारे में हम यही सोचते हैं। फिर यह कि उनसे पूछेंगे भी तो वो क्या बताएंगे, वो तो हां ही करेंगे क्योंकि उनको तो कुछ जानकारी है नहीं। मित्रों, जब इस तरह की बातें होती हैं, जब इस तरह के मन में सवाल उठते हैं तो हम तर्क वितर्क के द्वारा इसी तरीके से समझा भी देते हैं कि क्या जरूरत है उनको बताने की, ये तो फॉर्मेलिटी है, इस फॉर्मेलिटी का क्या मतलब है, ये फालतू की चीजें हैं, टाइम वेस्ट है, मैं आई डोंट बिलीव ऑन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी, इस तरह से भी लोग कहते हैं। दोस्तों, फॉर्मेलिटी पर बिलीव करें या ना करें, लेकिन हर फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी नहीं होती है। कुछ फॉर्मेलिटी सीधे सीधे हमारे संस्कार से जुड़े हुए होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी हमारे व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी में इतनी ताकत होती है, इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि वो आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं कर पाते। अब आप फॉर्मेलिटी इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ तर्क ज्यादा हो गए हैं, भावनाओं की कमी हो गई है, और उन दोनों का जो सामंजस्य होना चाहिए, जो मेल होना चाहिए, वो टूट गया है, वो ब्रिज खत्म हो गया है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं, बहुत ही छोटी सी घटना है लेकिन इसका प्रभाव देखिएगा। ये बात है 1 जनवरी की। हुआ ये फ्रेंड्स कि 1979 फर्स्ट जनवरी हुआ है कि 1978 में जब मैंने एमए किया तो एमए करने के 3 दिन बाद ही 1 दिसंबर को मुझे कॉलेज में वहीं सर्विस मिल गई। दोस्तों, मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली और सर्विस ज्वाइन करने के बाद मुझे 1 जनवरी को मेरी पहली सैलरी मिली 79 में 685 रुपीज। मुझे वो आंकड़ा अभी भी याद है, क्यों याद है अभी इस कहानी को छोड़ते हैं। 685 रुपए की सैलरी मिली। मित्रों, हम जहां रहते थे तो मैं तो अपनी माँ और भाई बहनों के साथ रहता था, हमारी दादी भी रहती थी जो हमारे चाचा जी के साथ रहती थी उसी शहर में। तो मित्रों, सैलरी लेकर मैं दादी के पास गया क्योंकि दादी थी, माँ तो थी ही, दादी भी थी, दादी बड़ी हैं, तो मैं दादी के पास गया और जाकर के मैंने वो पूरे के पूरे पैसे उनके हाथ में थमा दिए और मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो मैंने बताया कि दादी, ये जो मैंने पिछले महीने जो नौकरी ज्वाइन की थी उसकी ये पहली सैलरी है। मित्रों, मैं देख रहा था कि जब मेरा ये सुनना था कि दादी कभी मुझको देख रही थी और कभी उस सैलरी को देख रही थी, और इसके बाद वो चुपचाप उठी, उन्होंने अपना बटुआ खोला होगा अंदर जा करके, और वापस आई और मुझे वो पूरी की पूरी सैलरी लौटा दी और उसमें 10 रुपए उन्होंने और मिला दिए थे। और अब मेरे पास पहली मेरी सैलरी थी 695 रुपए, जिसमें 10 रुपए की सैलरी इनाम के रूप में या आशीर्वाद के रूप में मेरी दादी ने मुझे दिए थे। दोस्तों, ये घटना इतनी छोटी सी लग रही है लेकिन जब वो 10 रुपए ला करके दी तो मैं अंदर से बिल्कुल रो पड़ा, एकदम रो पड़ा। और मैं वापस आया, फिर मैंने अपनी माँ को पूरी घटना बताई। माँ को बहुत अच्छा लगा कि मैंने दादी को वो पहले अपनी पहली सैलरी दादी को ले जाकर दी। दोस्तों, ये घटना खत्म नहीं हो गई। वो एक उसकी मौत एक उस, यानी कि उसका जन्म 1 जनवरी 1979 को सुबह शाम को हुई और अगली सुबह तक उसकी मौत हो गई। दादी इस बात की चर्चा अपने जिंदगी के आखिरी दिनों तक करती रही और 2004 में उन्होंने इस दुनिया से विदा ली थी। 2004 यानी कि 25 सालों तक वो इस बात की चर्चा करती रही। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है कि वो इस बात की चर्चा करती रही, मेरी बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी स्मृतियों के खजाने में कोई बहुत ही साफ सुथरी सी छोटी सी झील बन गई हो। उनको अच्छा लगता होगा तभी तो वो चर्चा करती होंगी। बिना उनको अच्छा लगे वो मेरी चर्चा नहीं कर रही है, वो मेरी तारीफ नहीं कर रही है। मेरी तारीफ तो जो कर रही है क्या नहीं कर रही है वो जाने, लेकिन उनके खजाने में, स्मृतियों के खजाने में वो जो एक छोटी सी घटना है जिसमें मुझे तार्किक रूप से अंततः 10 रुपए का फायदा ही हुआ, दर्ज है। एक खूबसूरत घटना के रूप में दर्ज है। मैं आज भी सोचता हूं तो लगता है उससे उनको कितना सुकून मिलता होगा। जब वो दूसरों से चर्चा कर रही थी तभी नहीं, जब याद आ जाती होगी उनको ये बात तब उनको कितना सुकून मिलता होगा, कितना अच्छा लगता होगा। और मैंने किया क्या था? कुछ भी तो नहीं किया था, कुछ भी तो नहीं किया था। संस्कार रहे होंगे या कुछ रहे होंगे, माता पिता के आशीर्वाद, दादा दादी के आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा कि उस समय दिमाग में ये बात आई कि नहीं ये काम करना चाहिए। और अपनी पहली सैलरी, जैसे हम अपने घर का भोग लगाते हैं ईश्वर को भोजन के बाद, या हम प्रसाद बांटने से पहले ईश्वर को भोग लगा देते, खाते तो हम ही हैं, ईश्वर थोड़ी खाता है, और हम अपने पसंद का ही उसको भोग लगाते हैं ताकि हम उसको खा सकें। तो ये मेरे लिए वो दादी के माध्यम से ईश्वर को लगाया गया भोग था। दोस्तों हमारे पेरेंट्स बस यही चाहते हैं, उनको सबसे ज्यादा सुकून जो मिलता है वो इसी बात से मिलता है कि मेरे बच्चे मुझे पहचान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सत्कार दे रहे हैं। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात उन्हें लगता है कि नहीं, मेरे बच्चों में संस्कार मौजूद हैं, इससे उनको बड़ी राहत मिलती है। और ये लगता है कि हमारे मृत्यु के बाद भी हम इन संस्कारों के रूप में अपने बच्चों में जीवित रहेंगे और कहीं ना कहीं वो अमरत्व का एहसास करते हैं। क्योंकि अगर मैं बच्चों में जीवित हूं तो अमर हूं, ठीक है शरीर तो खत्म हो गया है लेकिन मैं अमर हूं, मैं मरा नहीं हूं, अपने बच्चों के एहसास में मैं मौजूद रहूंगा। तो मित्रों, खासकर मैंने आज के लाइफ मैनेजमेंट में इसको इसलिए लिया क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे जिंदगी में संस्कारों की, भावनाओं की, बड़ों के सम्मान, आदर, सत्कार की इतनी बड़ी भूमिका होती है और ये इतना बड़ा खजाना होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम जब छोटे होते हैं तब इनका, इन बातों का अनुमान नहीं लगता है, और जब हम बड़े होकर समझने लगते हैं तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है क्योंकि तब पेरेंट्स नहीं होते हैं। और फिर एक ब्लैंक, शून्यता, भयानक किस्म का खालीपन, एक ऐसा खालीपन कि अब उसको भरने के लिए कोई संभावना बची ही नहीं है। तो दोस्तों फिर उस खालीपन को रहने ही क्यों दिया जाए? अगर हम जान रहे हैं या कोई बता रहा है तो बेहतर है कि उसको अभी से ही संभाल लिया जाए। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब कल फिर हम किसी दूसरे इश्यू पर बात करेंगे, तब तक के लिए अभी इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।